डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट यशाया 17:19 ईसा 38 से 39 2024 जॉन ओसवाल्ट और टेड हिल्डेब्रांट। यह यशाया की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 19 यशाया अध्याय 38 और 39 है। खैर, आज सोमवार है और बारिश हुई, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आज शाम बारिश रुक गई है, इसलिए हम इसके लिए आभारी हैं। आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। पिता, हम आपकी रचना की देखभाल के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। ब्रह्मांड की व्यवस्था के आश्चर्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम बारिश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। क्लोरोफिल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए आपने जो अद्भुत संरचनाएं बनाई हैं, उनके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने हमारे आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए हमें अपना वचन दिया है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा, कि आप आज रात हमें अपने शब्द की व्याख्या करने के लिए यहाँ हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, कि आप हमारी मदद करेंगे। हम में से प्रत्येक को यह सुनने में सहायता करें कि आप अपने वचन के इन दो अध्यायों में से हमसे क्या कहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि यह हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, एक शब्द और फिर भी एक अलग अनुप्रयोग जिसे आप हमारे दिलों में लाते हैं, और इसलिए हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और भरोसा करते हैं कि आप इसे अपने तरीके से करेंगे। धन्यवाद। आपके नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। ठीक है, हम अध्याय 38 और 39 को देख रहे हैं, जो धारा 36 से 39 तक का अंत है। हमने कहा कि 36 से 39 किताब के किस पिछले खंड की दर्पण छवि है? 7 से 12। यह सही है। अध्याय 7 से 12 में राजा को ईश्वर पर भरोसा करने की चुनौती दी गई और उसने इनकार कर दिया, और निम्नलिखित अध्यायों में उस इनकार के निहितार्थों पर काम किया गया है जो मसीहाई साम्राज्य तक ले जाता है। फिर हमें 13 से 35 तक विश्वास का पाठ मिला, और अब हमारी दोबारा परीक्षा हुई है। और जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा, यशायाह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने वह करने का निर्णय लिया जो उसके पिता नहीं करते थे, और वह यह है कि उसके पिता जिस संकट का सामना कर रहे थे उससे कहीं अधिक बड़े संकट की घड़ी में भगवान पर भरोसा रखें, और परिणामस्वरूप अश्शूरियों से छुटकारा पाया गया। अब हम अध्याय 38 और 39 पर आते हैं, और उन अध्यायों में हमारे पास जो उभरती हुई भावना थी उसके बजाय 38 और 39 एक गिरावट की तरह हैं। अब जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि में कहा, इन दो अध्यायों की तारीख के बारे में कुछ प्रश्न हैं। जिस बेबीलोनियाई का उल्लेख 39:1 में किया गया है, मेरोडाक बालादान एक बेबीलोनियाई विद्रोही था जिसने वर्षों तक कई विद्रोहों का नेतृत्व किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह 701 में जीवित नहीं था जब सन्हेरीब से मुक्ति हुई थी, और यह एक समस्या प्रस्तुत करता है यदि 38 और 39 701 के बाद हैं। इस प्रकार की घटनाओं के लिए सबसे संभावित तारीख मेरोडाक बालादान के उतार चढ़ाव भरे करियर को देखते हुए वास्तव में लगभग 710 है। इसका मतलब यह होगा कि अध्याय 38 और 39 वास्तव में 10 साल या 9 साल पहले घटित हुए थे, 36 और 37 की घटनाओं से वर्षों पहले। अतः सही क्रम यह होगा, यदि हमारे यहाँ कालानुक्रमिक क्रम है। वास्तव में आखिरी घटना जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वह सन्हेरीब से मुक्ति है। तो सवाल यह है कि यदि यह सही है और हर कोई इससे सहमत नहीं है, तो एक कठिन समस्या यह है कि बाइबल हमें हिजकियाह के जीवन काल के लिए परस्पर विरोधी तारीखें बताती है। वस्तुतः हर दूसरे राजा के साथ हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, परंतु हिजकियाह के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। आपको एक तारीख मिल गई है जो कहती है कि उसने सामरिया के पतन से पहले 726 में अपना शासन शुरू किया था, और इसलिए उसका शासनकाल लगभग 696 में समाप्त हो गया। लेकिन हमें एक और सुझाव मिला है, और वह यह है कि उसने अपना शासनकाल लगभग 716 में शुरू किया और लगभग 686 में समाप्त किया। यदि तारीखों का यह सेट सही है, तो यह तर्क दिया जाएगा कि उसे जो अतिरिक्त 15 वर्ष दिए गए थे, वह 701 में दिए गए थे। इसलिए चाहे अन्य सबूत इसकी पुष्टि करें या नहीं, यह कहेगा कि हाँ, मेरोदाक बालादान 701 में जीवित था और वह था वहां 15 वर्ष अतिरिक्त दिए गए। यदि वास्तव में ये घटनाएं 710 में घटीं, तो 15 वर्ष 710 में दिए जा रहे हैं और उनकी मृत्यु 696 में हुई। इसलिए इन तिथियों में सामंजस्य बिठाने का कोई तरीका ही नहीं है। एक सेट सही है, दूसरा सेट गलत है, और हम नहीं जानते कि कौन सा है। आमतौर पर इस तरह के मामलों में हम कह सकते हैं, ठीक है, उसने अपने पिता के साथ एक सहशासक के रूप में शासन करना शुरू किया और फिर जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसने सत्ता संभाली। लेकिन पाठ इसका समर्थन नहीं करता। कुछ अन्य राजाओं के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन यहां इसका समर्थन नहीं होता। तो आपको बस अपने पैसे का भुगतान करना होगा और चुनाव करना होगा कि यहां क्या हो रहा है। यदि वास्तव में वे कालानुक्रमिक रूप से क्रम से बाहर हैं, तो यशायाह ने जानबूझकर ऐसा किया है और उसके पास ऐसा करने का एक कारण है, और हम उस बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि कारण है। और मुझे लगता है कि ये तारीखें सही तारीखें हैं, और वास्तव में ये घटनाएं सन्हेरीब से मुक्ति से पहले घटी थीं। मैं पहले भी कम से कम एक बार गलत हो चुका हूं, इसलिए इस पर अपना जीवन दांव पर न लगाएं। ठीक है, हम कुछ मिनटों में इसके बारे में और बात करेंगे। अध्याय 38 श्लोक 1। इस भविष्यवाणी में कितनी योग्यता है? कोई नहीं। अपना घर व्यवस्थित करो, क्योंकि तुम मर जाओगे, फिर न बचोगे। उस पर कोई प्रश्न? यह बिल्कुल स्पष्ट है। पर वह नहीं हुआ। क्या परमेश्वर के वादे विश्वसनीय नहीं हैं? हाँ, वे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें एक अंतर्निहित योग्यता है। वह ऐसा कहता नहीं है, लेकिन यह निहित है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह योना गया और नीनवे से कहा, 40 दिन और तुम जला दिए जाओगे और मुझे खुशी है। ठीक है, भगवान को उसके मरने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसे उसका ध्यान आकर्षित करने में दिलचस्पी है, इसलिए वह उसकी सेवा करेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं वहां तुम्हारे साथ हूं, लेकिन केवल इस हद तक। क्या हिजकियाह को किसी बात का पछतावा है? अच्छा, क्या वह? मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ हाँ, वह यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और मुझे लगता है कि ईश्वर वफादारी पर प्रतिक्रिया करता है और वास्तव में निंदा नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जी चुका है और आगे भी जीने की इच्छा रखता है और अपने दिल में मानता है कि वह और भी अधिक कर सकता है, भगवान उसकी प्रार्थना सुनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, उसने कथित तौर पर कई जगहों पर कहा है कि वह बेबीलोन के आक्रमण का कारण था। ठीक है, तो फिर भी कुछ टिप्पणीकारों का कहना है कि वह वही था जिसने यशायाह को शहीद किया था। हाँ, यह पारंपरिक है। खैर, शायद भगवान के पास कोई बेहतर विचार था। हाँ, शायद यहूदिया के लिए बेहतर होता यदि हिजकियाह मर जाता। मैं नहीं चाहता कि हिजकियाह मर जाए। ओह हाँ, और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही है, और यही मेरा मुद्दा है कि हम यहाँ जो देख रहे हैं वह ईश्वर की संप्रभुता और उस संप्रभुता के प्रति हमारी प्रतिक्रिया के बीच निरंतर परस्पर क्रिया है। ओह हाँ, यह बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यह क्या है? वह क्या है जिसका प्रभु प्रत्युत्तर देते हैं? मैं इस बिंदु को नहीं छोड़ रहा हूं। मैं बस हमें एक और कदम आगे ले जाना चाहता हूं। प्रभु क्या प्रतिक्रिया देते हैं? ठीक है, वह प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रार्थना आज्ञाकारिता, वफादारी आज्ञाकारिता। इसलिए हमने पहले कहा था कि वह पश्चाताप का जवाब देता है, और इसका कोई सवाल ही नहीं है। योना यही कहता है, और यिर्मयाह का अंश यही कहता है, निस्संदेह भगवान वास्तविक पश्चाताप के मद्देनजर विनाश की घोषणा को बदल देंगे। यहाँ जो हो रहा है वह इसे थोड़ा और जटिल बनाता है, क्योंकि हिजकियाह पश्चाताप नहीं करता है। मेरा मतलब है कि इसका कोई सवाल ही नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और मैं यह छोड़ रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हिजकियाह अपने पिछले व्यवहार के आधार पर दावा करता है और भगवान उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। अब फिर से मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि हम इस बारे में सोचें, वह यह है कि कभी कभी हम भगवान के वादों के बारे में एक तरह की अटकल वाली चीज के रूप में सोचते हैं, और मुझे लगता है कि पुराना नियम और बाइबल हमें क्या बताते हैं, कि ये भगवान के साथ चलना एक रिश्ता है, और रिश्ते कभी भी बेदाग नहीं होते, वे हमेशा अस्त व्यस्त रहते हैं। मेरा मतलब अशुद्ध नहीं है, मेरा मतलब गंदा है। वे कभी साफ सुथरे नहीं होते, वे हमेशा जटिल होते हैं। और फिर से भगवान हमारे साथ रिश्ते में हैं, और भगवान हम जो कुछ भी हैं उसके जवाब में भगवान की इच्छा को समायोजित करने के लिए तैयार हैं, और मेरे लिए यह अच्छी खबर है। यह साफ सुथरा नहीं है, ठीक है, भगवान ने यह कहा है, और मैं इस पर विश्वास करता हूँ, और वह इसे बेचता है। यह इतना साफ सुथरा नहीं है, लेकिन यह कहता है कि भगवान हमारे साथ शामिल है। वह इस बात की परवाह करता है कि हम क्या सोचते हैं, वह अपने कार्यों को विभिन्न तरीकों से हमारे लिए समायोजित करने जा रहा है, और वह क्या वह इस तरह का प्राणी है कि वह मुखौटा पहने हुए कोई ताकत नहीं है। इसलिए यह उन चीजों में से एक है जिसे मुझे लगता है कि अब हमारे लिए यहाँ पहचानना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि एक भविष्यवक्ता होना बहुत कठिन था। आप जानते हैं कि यशायाह भी इससे बाहर नहीं निकल पाया है, सामने का बरामदा, इससे पहले कि भगवान कहते हैं कि वहाँ वापस जाओ और उसे बताओ कि उसके पास 15 साल हैं। भगवान, मैं एक बेवकूफ की तरह दिखने जा रहा हूँ, यह सब ठीक है। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? तो यह साफ सुथरा नहीं है, लेकिन फिर भी यह समृद्ध और संतुष्टिदायक है। ठीक है, अब हमने यहाँ कुछ चीजें सूचीबद्ध की हैं। मैंने आपसे पूछा था कि इसमें कौन से तत्व हैं। हिजकियाह का जीवन जिसके प्रति परमेश्वर ने अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की, वे वहां क्या हैं? आइए ठीक वहीं पर काम करें। नंबर एक क्या है? नहीं, वह नंबर वन आपसे पहले नहीं चला। ममहम तो फिर वह इस सैर का वर्णन करता है, आपके सामने चला गया, मैंने किसी को सच या वफादारी में कहते हुए सुना। ठीक हाँ, पूरे दिल से तो चलना उन दोनों द्वारा योग्य है। और फिर वह कहता है कि मैंने अच्छा किया है, मैंने अच्छा किया है। अच्छा हाँ, आपकी नज़र में नहीं, मेरी नज़र में। मुझे लगता है कि अंत में यह काफी महत्वपूर्ण है। मैंने जो किया है उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने जो किया है उसके बारे में भगवान क्या सोचता है यह मायने रखता है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं और उत्पत्ति 17:1 को देखते हैं। बाइबल बहुत आकर्षक है, जिस तरह से सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। आप में से कुछ लोग अब्राहम अध्ययन के लिए यहाँ आए थे और आपको याद होगा कि अध्याय 16 इश्माएल त्रासदी है। यहाँ 17 आता है, 13 साल बीत चुके हैं, 13 बाइबल में ईश्वर की ओर से 13 वर्षों के मौन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। लेकिन जब अब्राम 99 वर्ष का था तब प्रभु ने अब्राम को दर्शन दिए और उससे कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, अब आगे क्या होगा? मेरे सामने चलो और निर्दोष बनो। मुझे आश्चर्य है कि क्या राजा को अपनी उत्पत्ति का पता है। ऐसा माना जाता था कि राजाओं ने स्वयं टोरा की एक प्रति निकाल ली थी और उसे अपने पास रख लिया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से शायद ही किसी ने ऐसा किया हो। इसका क्या मतलब है? भगवान के सामने चलना मना है। ठीक है, आप मुझसे आगे निकल रहे हैं, ये तो इसका वर्णन है, लेकिन वह क्या है? ठीक है, वह क्यों कहता है पहले चलो? भगवान भगवान के साथ क्यों नहीं चलते? ठीक है, वफादारी का प्रदर्शन। ठीक है, ठीक है, कोई सीधी रेखा नहीं थी। हाँ 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 और मुझे संदेह है कि यहाँ चरवाहे की कुछ कल्पना है कि भेड़ चरवाहे के सामने चलती है। आपके पास एक दिलचस्प बयान है, मैं अपनी आँख से आपका मार्गदर्शन करूँगा। क्या भेड़ लगातार अपने कंधे की ओर देख रही है? चरवाहा अब कहाँ देख रहा है? रिश्ते का वर्णन इस प्रकार क्यों करें? हालांकि टहलने के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे पहले भी रह चुका हूँ। ठीक है, यह एक यात्रा है, यह एक यात्रा है। मुझे लगता है कि इंजील ईसाइयों के रूप में हमें जिन चीजों से लगातार जूझना पड़ता है उनमें से एक यह विचार है कि मोक्ष एक स्थिति है। मैं एक सुरक्षित स्थिति में हूँ और बस आने तक मैं यहीं सड़ जाऊंगा मुझे पाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि बाइबल शायद एक या दो बार उस विचार का समर्थन करेगी, लेकिन पुराने और नए नियम दोनों में अधिकांश समय भगवान के साथ जीवन को टहलने के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यह एक मैराथन है। यह सही है, यह लंबे समय तक चलने वाला है। फिर से आप यहाँ बहुत सारे विवरण निकाल सकते हैं और हमारे पास ऐसा करने का समय नहीं है, लेकिन मैंने कई साल पहले एक अध्ययन किया था और यह आश्चर्यजनक है कि क्रियाओं के अर्थ की सभी घटनाएं पुराने और नए नियम दोनों में चलें। उनमें से 3/4 रूपक हैं, उनमें से केवल 1/4 वास्तव में सड़क पर चलने वाले किसी व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं। 3/4 संदर्भ भगवान के साथ आपके जीवन के बारे में है, इसलिए वह कह रहा है कि मैं इसमें रहा हूँ। भगवान लंबे समय से आपके साथ हैं और मैं आपकी भेड़ हूँ जो आपके बताए मार्ग पर आपके आगे चल रही हूँ, और फिर आपकी छड़ी और आपकी लाठी वे मुझे सांत्वना देते हैं। एक चरवाहा भेड़ को निर्देशित करने के तरीकों में से एक है, अपनी छड़ी से दूर रहना, वहाँ खाई। तो यह इन प्रमुख तत्वों में से एक है। मैं आपके साथ लंबे समय से रिश्ते में हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता रहा हूँ। ठीक है, अब हम उस बात पर आते हैं जिसके बारे में आप शुरुआत में बात करना चाहते थे। हम इस सैर का वर्णन कर रहे हैं। कैसी सैर? हमने पहले इस बारे में थोड़ी बात की है, लेकिन आइए इसके बारे में और बात करें कि वे दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। सत्य और वफादारी कैसे संबंधित हैं? ठीक है, यदि आप झूठे हैं तो आप बेवफा हैं। अच्छा अच्छा, और क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, बाइबल में सत्य वह है जो आप नियमित रूप से करते हैं। यह सबसे पहले कुछ ऐसा नहीं है जो आप कहते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप करते हैं। वह है किसी के प्रति सच्चा होना, उनके प्रति वफादार होना, बिल्कुल विश्वसनीय होना। यह हिब्रू शब्द है जो चलता है, और यह वही हिब्रू शब्द है जिसका मूल अर्थ भरोसेमंद विश्वसनीय है, इसलिए इसमें ईश्वर है। मेरी चाल आप मुझ पर निर्भर रहने में सक्षम रहे हैं, मैं आपके प्रति सच्चा रहा हूं और मुझे लगता है कि इसका निहितार्थ बहुत स्पष्ट है। अन्य लोग मुझ पर निर्भर रहने में सक्षम रहे हैं और यह बात पुराने नियम से चली आ रही है कि हम मिले हैं एक ईश्वर कौन सच्चा है। अब परिभाषा के अनुसार देवता असत्य हैं क्योंकि देवता केवल मनुष्य हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर लिखा गया है और मनुष्य बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। मनुष्य दुखद रूप से अपने संबंधों में झूठ के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन इब्रानी जो कह रहे हैं क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हम भगवान से मिले हैं? कौन अपनी बात रखता है? हमने एक ऐसे ईश्वर से मुलाकात की है जो जो कहता है वह करता है और जो कहता है वह करता है वह करेगा। इसका मतलब यह है कि इब्रानियों ने इस ईश्वर को नहीं बनाया है। यदि आप एक ईश्वर बनाते हैं तो वह सिर्फ एक बड़ा इंसान होगा, लेकिन यदि आपके पास एक भगवान है जो वैसा नहीं है जैसा कि हम इंसान हैं, उन्होंने उस भगवान को नहीं बनाया, उसने खुद को उन पर गिरा दिया। इसलिए मैं अपनी चाल में आपकी नकल कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यही कारण है कि व्यभिचार यौन पाप है। अब अगर मैं जा रहा होता बाकी सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक यौन पाप को चुने, मुझे लगता है कि मैं बुरे पापों में से एक को चुनूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि व्यभिचार वह है जो बाकी सभी का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह विश्वास को तोड़ रहा है, यह असत्य है और उस अर्थ में यह एक भयानक है उस परमेश्वर के प्रति अपराध जो सच्चा है। मैं आपके सामने वफादारी से चला हूँ, मैं आपके सामने पूरे दिल से चला हूँ। अब मैंने आपको वहाँ कुछ संदर्भ दिए हैं, हम उन्हें देखने के लिए समय नहीं लेंगे, लेकिन एक इतिहास 28:9 में पहला है, डेविड सुलेमान के लिए प्रार्थना कर रहा है कि 29 में उसके पास पूरा दिल हो। 19 सुलेमान पहले राजा 8:57 में पूरे दिल से प्रार्थना करता है और 6:61 सुलेमान प्रार्थना करता है कि लोग पूरे दिल से भगवान की सेवा करने में सक्षम होंगे। और फिर यहाँ आता है शायद पूरे पवित्र शास्त्र में सबसे दुखद कविता पहले राजा 11, क्योंकि सुलेमान कई विदेशी महिलाओं से प्यार करता था और जब वह बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उसका दिल बदल दिया, ईश्वर से दूर हो गया और उसका हृदय अब पूर्ण नहीं था। 1514 वह आशा है जिसने सच्चे हृदय से ईश्वर की सेवा की, भले ही उसके प्रदर्शन में कुछ चीजें बाकी रह गईं, लेकिन दोरे इतिहास 19:9 में उसका हृदय पूर्ण था। यहोशापात तोरा सिखाने के लिए शिक्षकों को भेज रहा है भूमि के माध्यम से और वह कहता है कि इसे पूरे मन से करो। अब हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? राजा जेम्स को कोई समस्या नहीं थी। किंग जेम्स कहते हैं, एक संपूर्ण हृदय लेकिन निःसंदेह हम आज जानते हैं कोई भी पूर्ण नहीं है। तो आधुनिक समकालीन अनुवाद इस शब्द के साथ पूरे मानचित्र पर हैं, वफादार, वफादार, पूरे दिल से समर्पित, और ईएसबी के पास पूरा दिल है। लेकिन बात की बात यह है कि यह एक आकर्षक हिब्रू क्रिया है, इसके मूल में शालोम जैसा ही मूल है जिसके साथ मैंने बात की है। इससे पहले कि मैं आपसे इस बारे में फिर से बात करूं, शालोम अनुवाद शांति बहुत कमजोर है क्योंकि अंग्रेजी में शांति का मतलब केवल संघर्ष की अनुपस्थिति है। शालोम को एकजुट होने के लिए एक साथ रखा जाना है और इसलिए यदि आपके पास मसीह का शालोम है तो आपने अपना डाल दिया है, टूटे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और आपको संपूर्ण बनाया। यह एक क्रिया है जिससे उनके दिलों को शर्मिंदा किया जाता है। यदि आपके पास कोई ऐसा ऋण है जो नहीं चुकाया गया है तो आप इसे कैसे शर्मिंदा करते हैं? आप इसका भुगतान करते हैं, कुछ लटका हुआ है, कुछ संतुलन से बाहर है, लेकिन जब आप भुगतान करते हैं तो आपने इसे संतुलन में डाल दिया है। तो उस दिल के बारे में क्या कहना जो शर्मिंदा है? यह अविभाजित है और यही कारण है कि किंग जेम्स परफेक्ट कह सके। यह सब भगवान के लिए है, कोई अगर्मगर नहीं, लेकिन एक दिल जो सुलेमान के बुढ़ापे जैसा है आंशिक रूप से यहोवा के लिए है और आंशिक रूप से देवताओं के लिए है। यह विभाजित है, इसलिए बाइबल हमें जो कह रही है वह यह है कि आप पूरी तरह से भगवान के हो सकते हैं, उसे पूरी तरह से बिना आगमन के, बिना किसी सीमा के। यह ईसाई पूर्णता है, चाहे कोई भी लंबा हो या छोटा, क्या उसके पास संपूर्ण हृदय हो सकता है? और इसका उत्तर हाँ है। क्या इसका मतलब यह है कि आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं? नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से समझते हैं? नहीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपका दिल पूरी तरह से भगवान का है। और फिर से याद रखें कि आप में से कुछ लोग लंबे समय तक मेरे साथ रहते हैं। आप इन बिंदुओं को समझने जा रहे हैं। दिल दिल यह यहाँ थोड़ा भ्रामक है, क्योंकि हम इसे देखते हैं और वेलेंटाइन डे के बारे में सोचते हैं। दिल मानव व्यक्तित्व का मूल है। यह वह जगह है जहाँ आप सोचते हैं। यह वह जगह है जहाँ आप सोचते हैं। यह वह जगह है जहाँ आप महसूस करते हैं। यह वह जगह है जहाँ आप निर्णय लेते हैं। हम पूरे दिल से सुनते हैं और हम सोचते हैं कि ओह, आप वास्तव में भगवान के प्रति पूरी तरह से अस्पष्ट महसूस करते हैं। नहीं, आपके व्यक्तित्व का केंद्रीय केंद्र सब भगवान है। यही वह कह रहा है और यह रोमांचक है। यह रोमांचक है क्योंकि स्पष्ट रूप से यह संभव है। परमेश्वर हिजकिय्याह को झूठा नहीं कहता। क्या वह मेरा फोन है? ऐसा मत सोचो। नहीं। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम वेस्लियन हैं। हमें माफी मांगना बंद करना होगा। यह बाइबल में है कि आपके व्यक्तित्व का मूल पूरी तरह से अविभाजित फैशन में भगवान से संबंधित हो सकता है। मैंने फिर कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हम पूरी तरह से प्रदर्शन करते हैं? नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि हम पूरी तरह से समझते हैं? नहीं। यह अब फिर से अपनेपन के बारे में बात कर रहा है। मुझे लगता है कि कभी कभी हम इसे बनाते हैं, हम इसे सुपर आध्यात्मिक बनाते हैं। अरे, मैं कर सकता हूँ। मैं आज रात आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ और बिना किसी सवाल के गवाही दे सकता हूँ, मेरा दिल पूरी तरह से करेन कैनेडी ओसवाल्ड का है। मैं उसका हूँ, यह सही है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक आदर्श पति हूँ? वह यहाँ नहीं है, इसलिए हाँ, ऐसा है। वह टेप देखेगी और मैं उसके लिए भुगतान करूँगा। नहीं, मैं नहीं करूँगा। नहीं, मैं नहीं करूँगा। लेकिन आप जानते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं उनका हूँ और आप में से बाकी महिलाओं को राहत मिल सकती है। तो हम भगवान के बारे में यह क्यों नहीं देख सकते कि मैं उनका हूँ? कोई सीमा नहीं, कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं आता और मैंने वही किया है जो है आपकी दृष्टि में अच्छा है। ठीक है, तीन छंदों पर 40 मिनट बुरा नहीं है। ठीक है, यह है। इसलिए मुझे लगता है कि यह यही है। यदि हिजकिय्याह यह कह सकता है कि इस कमरे में प्रत्येक व्यक्ति यह क्यों नहीं कह सकता कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा न करने का कोई कारण है, सिवाय शायद विश्वास की सीमा के, यदि वह ऐसा कर सकता है, यह हिजकिय्याह के लिए है। वह आपके लिए यह कर सकता है और भगवान जवाब देंगे और कहेंगे, हाँ, आप सही हैं, आप सही हैं, ठीक है। इसलिए हम श्लोक 6 पर जोर देते हैं। मुझे लगता है कि यह इस विचार का समर्थन करता है कि ये अध्याय 36 से पहले घटित हो सकते हैं और 37, यदि वे 36 और 37 के बाद के हैं, तो उसने पहले ही शहर को अश्शूर से छुड़ा लिया है। ठीक है, मैं पृष्ठभूमि में इस अजीब बात के बारे में बात करता हूँ। धूप घड़ी नहीं बल्कि एक सूर्य सीढ़ी है जो ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, चलो फिर आते हैं। वह ठीक हो गया है। उन्हें 15 साल दिए गए हैं। 10 से 20 छंदों में इस कविता का स्वर क्या है? सभी 4 ठीक है। हाँ 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 हाँ, यह बहुत उदास है। आप कहाँ कहेंगे कि दूसरा भाग शुरू होता है? खैर, 16 के बाद भी यह अभी भी बहुत उदास है, है ना? मुझे लगता है कि यह 19 अंत हमें मिल गया है। धन्यवाद, लेकिन हमारे पास 9 छंद हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि इस आदमी को अभी 15 साल दिए गए हैं। आप उससे ऐसी ही उम्मीद करेंगे, मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि वह ऊपर नीचे कूदता रहे, लेकिन हमारे पास बहुत कम है। आपका धन्यवाद श्लोक 19 को छोड़कर हाँ हाँ मैं तुम्हें 17 दे दूंगा। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ कि वह कह रहा है कि भगवान ने मेरी जान लेने का इरादा किया है। मैंने उनकी दया की अपील की और उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। प्रभु की स्तुति करो। ठीक है, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए समस्या यह है कि आपके पास 9 छंद हैं जिसमें उसने मेरी जान लेने का इरादा किया है और 2 छंद धन्यवाद के हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जो बात मुझे यहाँ प्रभावित करती है वह यह है कि यह मुख्य रूप से मृत्यु दर पर एक प्रतिबिंब है। मुझे अपने दिनों के बीच में ही प्रस्थान करना होगा, मैं प्रभु को नहीं देख पाऊंगा, मैं अब मनुष्य की ओर नहीं देखूंगा। मेरा निवास उजाड़ दिया गया है, दिन रात तू मुझे अबाबील व सारस की नाई अंत कर डालता है, मैं कबूतर की तरह विलाप कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी आंखें थक गई हैं, मैं उत्पीड़ित हूँ, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। उन्होंने खुद मुझसे बात की है और अब उन्होंने यह किया है। मुझे नहीं लगता कि यह वह उपचार है जिसके बारे में वह बात कर रहा है। वह कह रहा है कि भगवान ने कहा है कि तुम मरने वाले हो। ओह, मैं उसके बारे में क्या कहने जा रहा हूँ। खैर, मैं अपनी आत्मा की कड़वाहट के कारण अपने सभी वर्षों में धीरे धीरे चलूंगा। वाह, यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अभी अभी मृत्यु से बचाया गया है। हे, मुझे स्वस्थ कर दो और मुझे जीवित कर दो। यह मेरे कल्याण के लिए था कि मुझ में बहुत कड़वाहट थी। मुझे लगता है कि बोनी इस विचार के सबसे करीब है कि भगवान ने उसका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए, जो मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और किसी तरह से अपने जीवन पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए उससे कहा था। मुझे लगता है कि आप श्लोक 17 को उस बिंदु पर समझ सकते हैं जो मेरे कल्याण के लिए था और हो सकता है, लेकिन यहाँ जो बात मुझे प्रभावित करती है वह यह है कि यह क्या है। इस तथ्य के बारे में अधिक की हिचकियाह एक नश्वर है, न कि मुक्ति के बारे में, जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवाल यह है कि वह कौन है। हमारे यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है, वह बच्चा कौन है? याद रखें कि वह वापस आ गया है। क्या वह मसीहा है? मेरा मतलब है कि उसने साबित कर दिया है कि भगवान भरोसेमंद है। उसने सभी बाधाओं के बावजूद उस पर भरोसा किया है और उसके भरोसे से देश को बचाया है। ठीक है ठीक है। संख्या 38 एक अच्छा आदमी कह रही है, वास्तव में अच्छा लेकिन अंत में एक नश्वर आदमी, वह मरने वाला है। उन्हें 15 साल और दिए जा सकते हैं, लेकिन यह कविता किस बारे में बात करती है? लेकिन वह दिन आने वाला है। ठीक है, मुझे जाने दो। जाने से पहले मैंने सवाल पूछा कि यह हमसे क्या कहती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। हालांकि हम स्वर्ग में विश्वास करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हिचकियाह को वास्तव में इसके बारे में नहीं पता था। यह आप भजनों में देखते हैं, भगवान आप मुझे मरने नहीं दे सकते क्योंकि कब्र में कोई भी आपकी प्रशंसा नहीं करता है, या वह कर देगी, तो आपको मेरी प्रशंसा की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इससे आगे जाते हैं और नहीं कहते हैं तो हमें आगे रहस्योद्घाटन का लाभ मिलता है। हम जानते हैं कि वहां एक धन्य स्वर्ग है। हमारे लिए अब भी यहां क्या है? ठीक है, यह अच्छा है, यह अच्छा है, यह अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, यह एक वास्तविक दुनिया है और हमें अब उसके साथ चलने की जरूरत है। हाँ 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 हाँ। सीएस लुईस की महान पंक्तियों में से एक है, स्वर्ग अब शुरू होता है और नर्क अब शुरू होता है। हाँ हाँ, तो हाँ, अब हर दिन संगति के उस जीवन में चलें, इस अर्थ में कि यह एक वास्तविक दुनिया है, यह कोई छाया दुनिया नहीं है जिससे हम बाहर निकलने का इंतजार करते हैं और कहीं और जाओ। ठीक है, काफी अच्छा है। इसलिए अध्याय 39 बेबीलोनवासी क्यों आए श्लोक 1 हमें क्या बताता है? उन्होंने सुना कि वह बीमार था और अब ठीक हो गया है। यह दिलचस्प है कि बाबुल बहुत दूर है, सीधे रेगिस्तान के उस पार। यूफ्रेट्स नदी के ऊपर और नीचे सड़क मार्ग से यह लगभग 600 मील है। यह लगभग 1000 मील है, तो यह एक बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ 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 हाँ, अरे एक मिनट रुकिए, क्या आपने सुना है कि वह यहूदी लड़का वहाँ है? आप जानते हैं कि वहाँ भूमध्य सागर का रास्ता क्या है? वह बीमार था और वह मौत से उबर रहा था, यह हर कोई जानता था। वह मरने वाला था और वह ठीक हो गया। क्या आपको लगता है कि वे कुछ जानते हैं जो हमें जानना चाहिए? तो यह बहुत स्पष्ट है। और हिजकिय्याह कैसे प्रतिक्रिया देता है? उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि सभी संपत्तियां ईश्वर की होने के बजाय उसकी थीं। ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह ठीक होने का हकदार था। हाँ, मुझे लग रहा है कि वह चकित हो गया था। वाह बेबेल, हमने आखिरकार बड़े लड़कों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि भले ही बेबीलोन अंगूठे के अधीन था, असीरिया यह एक तरह से न्यूयॉर्क शहर के वाशिंगटन डीसी जैसा था। बेबीलोन को हमेशा से पता था कि वे वास्तव में परिष्कृत, सुसंस्कृत, शानदार, अच्छे दिखने वाले स्मार्ट लोग थे, और वे असीरिया में जमा हुए लोग थे। हो सकता है कि इस समय वे हमें अपने अंगूठे के नीचे रख रहे हों, लेकिन हर कोई जानता है कि बेबीलोन कहाँ है। मेरा मतलब है छोटा डिंकी यहूदा। वाह, यह हमारा मौका है। कैसी विडंबना है कि आप बेबीलोन को अपनी संपत्ति दिखाने जा रहे हैं। आप बेबीलोन को अपने हथियार दिखाने जा रहे हैं, और मेरे पास बस उन बेबीलोनियाई लोगों की एक तस्वीर है जो हंसिन जाग कर रहे हैं। आपको याद है क्या असीरियन ने उससे कहा? अरे आप जानते हैं कि अगर आपके पास घोड़ों पर चढ़ने के लिए 2000 लोग होते, तो हम आपको 2000 देते और फिर भी हम आपको हरा देते। क्या होता है जब हम दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं? आत्म प्रशंसा, यह सही है। हाँ हाँ, लेकिन दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देती है? वे प्रभावित नहीं हैं। वे प्रभावित नहीं हैं। ओह हाँ, यदि इससे उनका उद्देश्य पूरा होता है। हाँ हाँ, और ऐसा अक्सर होता है कि दुनिया अधिक चालाक होती जा रही है, वे तकनीकी रूप से अधिक उन्नत होती जा रही हैं, वे इस तरह की सभी चीजें करने जा रहे हैं, और हम देहाती ढेले की तरह दिखते हैं जो उन्हें पहले से ही मौजूद चीजों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास जो कुछ नहीं था वह यहोवा था, और हिजकिय्याह ने अपना मुंह बंद रखा। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह शर्मिंदा होता तो हम अक्सर सही होते। हाँ, अच्छा हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ भगवान की महिमा का बखान करने का अवसर था, जो कि क्या है? अध्याय 2 में बहुत पहले सभी राष्ट्र भगवान के टोरा को सीखने के लिए यरूशलेम की ओर जा रहे थे, और वे कहेंगे कि आइए हम प्रभु के साथ चलें, और उसने इसे उड़ा दिया। हाँ हाँ हाँ, डैनियल के विपरीत बड़ा सिर मिला। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। और तो यशायाह कहता है कि तुमने उसे क्या दिखाया? उन्होंने वह सब कुछ देखा है जो मेरे घर में है, मेरे भंडार में कुछ भी नहीं है। मैंने उसे नहीं दिखाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह यहाँ थोड़ा असहज होने लगा है और इसे उजागर करने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं जानता, यशायाह ने अच्छा कहा। यह अच्छी बात है, क्योंकि बेबीलोन के लोग एक दिन इन सब पर अधिकार करने जा रहे हैं। तुम्हारी कोठरियों में देखो, वे दिन आ रहे हैं जब तुम्हारे घर में वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे पूर्वजों ने आज के दिन तक रखा है। बेबीलोन ले जाया जाए। अब यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि असीरिया यहाँ समस्या है। आप जिस भी तारीख को 710-701 लें, असीरिया ही समस्या है। तो किसी भी तरह वह भविष्यवाणी किस बारे में है? अब आप जानते हैं कि आलोचक क्या कहेंगे। आलोचक अच्छा कहेंगे, कोई 150 साल बाद लिख रहा है, यह जानते हुए कि यह बेबीलोन था जिसने इसे वापस ले लिया। खैर, अगर आप वह नहीं खरीदते हैं जो मैं नहीं खरीदता, तो इसका क्या मतलब है इसे यहाँ ला रहे हैं? हाँ, एक और कारण भी है, और वह यह है कि 40 से 66 बेबीलोन में निर्वासितों को संबोधित है। तो यहाँ 39 में हम एक तरह से परिवर्तन कर रहे हैं, हम सीरिया के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि सीरिया यहाँ बड़ा मुद्दा नहीं है। अब से 150 साल बाद बड़ा मुद्दा बेबीलोन होने जा रहा है। जब हम बात करते हैं यह निर्वासन व्यवसाय, जब हम राष्ट्र पर भरोसा करने के खतरे के बारे में बात करते हैं, तो आपके लिए अंतिम खतरा भविष्य में होने वाला है और आपको इसे जानने की आवश्यकता है। और जब यह आता है तो जान लें कि भगवान इसे पहले से जानता था। हमने पहले ही कहा है, भविष्यवाणी का एक उद्देश्य यह है कि जब ऐसा हो तो आप अंधे न हो, आप तैयार हो, और यही यहाँ हो रहा है। प्रभु कहते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, और आपके कुछ बेटे जो आपसे आएंगे, जिनके आप पिता बनेंगे, छीन लिया जाएगा और वे नपुंसक हो जाएंगे। नपुंसकों की संतानें क्या नहीं हो सकती? दाऊद के वंश में हिजकियाह का वंश क्या है? यह सदैव के लिए सिंहासन पर रहेगा। तेरे कुछ पुत्र बेबीलोन में नपुंसक होंगे। तब हिजकियाह ने यशायाह से यह वचन कहा, प्रभु के बारे में आपने जो कहा है वह अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने सोचा था कि मेरे दिनों में शांति और सुरक्षा होगी। उफ, यह एक अच्छा शब्द है, क्योंकि यह मेरे साथ नहीं होने वाला है। तो क्या हिजकियाह यह अच्छा आदमी है? यह व्यक्ति जिसने पूरे दिल से भगवान की सेवा की है, क्या वह मसीहा है? नहीं, वह नश्वर है और वह विश्वास करने योग्य नहीं है। यह एक बार का नहीं हो सकता, यह जीवन का एक तरीका होना चाहिए। और यही सवाल उठता है कि अब हम जानते हैं कि भगवान भरोसेमंद है। कोई अगर-मगर नहीं, कोई मगर नहीं। यह साबित हो चुका है कि हिजकियाह ने इसे साबित कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि हमें विश्वास के जीवन के लिए क्या प्रेरित करेगा? संकट में सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि विश्वास के जीवन के लिए। और वास्तव में हम पुस्तक के अगले भाग में यहीं जा रहे हैं। हमने विश्वास की बात प्रदर्शित की है। ईश्वर भरोसेमंद है, इसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन सवाल यह है कि हमें क्या प्रेरणा मिलेगी भरोसे की जिंदगी, और फिर उससे आगे इसे क्या संभव बनाएगा ऐसा जीवन जीने के लिए। और जैसे ही हम 40 से 66 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं, हम इन प्रश्नों को सामने आते देखेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वही मुद्दा है, और वह व्यक्ति देश को नहीं बचा सकता है। इसलिए वास्तविक अर्थों में 7:12 से अंत तक मसीहा के वादे के साथ 36 से 39 तक यह कहते हुए समाप्त होता है कि हिजकियाह ने भरोसा किया, लेकिन वह मसीहा नहीं है। हमें यह जानने के लिए और अधिक रहस्योद्घाटन करना होगा कि मसीहा कौन है, और यही इन अगले अध्यायों में आता है। हाँ, कुछ हुआ तो इसका मतलब शायद ईश्वर का आशीर्वाद है। हमें वास्तव में सावधान रहना होगा कि हम क्या करते हैं। और यह फिर से पुरानी कहानी है कि सावधान रहें, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं वह आपको मिल सकता है। ओहा ओहा ओहा, मैं जब आप देहाती झरनों के बारे में बात करते हैं, तो यह लगभग उबाऊ होता है कि इस तरह की चीजें अक्सर एक महान पुरुद्धार के बाद होती हैं। कुछ महान के बाद सफलता, आपने अपनी सतर्कता को कम कर दिया। हाँ हाँ, मुझे संदेह है कि यह उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा। कुछ लोग कहेंगे, खाओ पियो और कल के लिए मौज करो, हम मरते हैं। अन्य लोग, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, वे शायद भाग्यवादी हो जाएंगे, और कुछ लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास जीने के लिए 2 साल हैं, तो आपकी बकेट लिस्ट क्या है, इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ। लेकिन हाँ, और मैं हमेशा फिर से, मनुष्य का पूरा प्रश्न दिलचस्प है। इसमें कहा गया है कि जब उसने शासन करना शुरू किया था, तब वह 12 वर्ष का था। इसलिए यदि उसका जन्म इस समय के दौरान हुआ है, तो हिजकियाह के पास इस बच्चे के जन्म से पहले 3 साल थे। कहते हैं कि एक लड़का बच्चे के साथ समय बिताने के लिए बहुत व्यस्त है। या क्या आप 20 शाही बच्चों में से एक को जानते हैं? सभी प्रकार के दिलचस्प सवाल हैं कि क्या हिजकियाह का कोई बेटा नहीं था और क्या वह मरने से इतना डरता था। लेकिन फिर भी विडंबना यह है कि यशायाह अच्छा कहता है, हाँ तुम्हें एक बेटा हुआ है, लेकिन आपके सभी वंशज हिजड़े बनने जा रहे हैं। ओ ठीक है, इससे चीजें बदल जाती हैं, लेकिन अगर हम एक मसीहा की तलाश करते हैं तो हमें मानव की संपूर्ण क्षमता से परे देखना होगा। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे, पिता आपका धन्यवाद कि हम आपके लिए पूरा दिल रख सकते हैं, नहीं यदि नहीं कोई परंतु नहीं, आपका धन्यवाद। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप उस हद तक ऐसा करेंगे जो हम में से किसी एक या सभी के लिए सच है। आप भी करेंगे हमें वह सब सक्षम करने के लिए अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करें जो हमें वह सब समझने में सक्षम बनाए जो इसमें शामिल है और वह सब जो इसका अर्थ निकाल सकता है। हिजकियाह के लिए धन्यवाद, उन्होंने जो विश्वासयोग्यता प्रकट की उसके लिए धन्यवाद। हमें कम से कम आपके नाम पर अंत तक उनके समान विश्वासयोग्य रहने में मदद करें, हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यह यशायाह की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर जॉन ओसवाल्ट हैं। यह सत्र संख्या 19 यशायाह अध्याय 38 और 39 है।